माधव जय कुंज बिहारी जय राम जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजाकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद्भक्त भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीस गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೇ ಗಿರಿಂ, ಯತ್ಕೃಪಾಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುದೀನತಾರಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂಧ ಸೇ ದಸಮ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇಖ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಸಾಥ್ ಹೀ ಸಾಥ್ ಆಜ್ ಬಡಾ ಹೀ ಪಾವನ್ ದಿವಸ ಹೈ. ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ ತೋ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಹೋತಾ ಹೈ, ಉಸಿ ಉತ್ಸವೋ ಕಿ ಶೃಂಖಲಾ ಮೇ ಆಜ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ತಿರುಭಾವ ತಿಥಿ ಭೀ ಹೈ, ತಿರುಭಾವ ತಿಥಿ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ. ವೈಸೆ ವೈಷ್ಣವೋ ಮೇ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸೇ ಅಧಿಕ ತಿರುಭಾವ ಕೋ ಮಹತ್ವತಾ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಕ್ಯೋಕಿ ಉಸ್ ದಿನ ವೋ ಶ್ರೀ ಗೋಲೋಕ್ ಧಾಮ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ವೈಷ್ಣವ ಮೇ ಪ್ರಾಯ ತಿರುಭಾವ ತಿಥಿ ಕೋ ಅಧಿಕ ಮಹತ್ವತಾ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ತೋ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ದಸಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಸೇ ಲೇಕೆ ಪಚ್ಚೀಸವೇ ಶ್ಲೋಕ ತಕ್, ಕ್ಯೋಕಿ ಜೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ನೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಖಾ ಹೈ ವೋ ಪಚ್ಚೀಸವೇ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ಕೇವಲ ಶ್ಲೋಕ ಔರ್ ಅನುವಾದ ಕೋ ಪಢತೆ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಜೋ ಹಮ್ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಕರೆಂಗೇ ವೋ ಪಚ್ಚೀಸವೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೀ ಕರೆಂಗೆ. ಶಂಖ ತೂರ್ಯ ಮೃದಂಗಾನಾಂ ಭೇರಿಡಿ ಮೃದಂಗಾನಾಂ ಮಹಾನ್, ಹಸ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ ರಥಪತ್ತೀನಾಂ ನದತಾಂ ನಿಶ್ವನೋಭವತ್. ಶಂಖೋ ತುರಿಯೋ ಢೋಲೋ ಭೇರಿಯೋ ತಥಾ ಡಮರಿಯೋ ಕೆ ಆವಾಜ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಹಾಥಿಯೋ ಘೋಡೋ ತಥಾ ರಥ ಪರ್ ಚಡೆ ಔರ್ ಪೈದಲ್ ಸಿಪಾಹಿಯೋ ಸೇ ನಿಕಲ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಧ್ವನಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಲಾಹಲಪೂರ್ಣ ಥೀ. ತೋ ಸಭಿ ಜಾನತೆ ಹೈ ಜೋ ಪ್ರಕರಣ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ ವಹ ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ. ಅಬ್ ಜೋ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಕೋಲಾಹಲಪೂರ್ಣ ಹೋತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ನೇ ದೇಖಾ ಭೀ ಹೋಗಾ, ಜೋ ಮಿಲಿಟರಿ ಮ್ಯಾನ್ ರಹತೆ ಹೈ, ಸಿಪಾಹಿ ಲೋಗ ರಹತೆ ಹೈ, ತೋ ವೋ ಕದಮ ತಾಲ ಮಿಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಡ್ರಮ್ ಭೀ ಲೇಕೆ ಚಲತೆ ಹೈ, ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ವಾದ್ಯಂತ್ರ ರಹತೆ ಹೈ, ಉಸ್ಸೆ ಉನ್ಕೋ ಊರ್ಜಾ ಪ್ರದಾನ ಹೋತಿ ಹೈ. ಸಂಗೀತ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ದೋನೋ ತರಹ ಕಾ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಊರ್ಜಾ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಭೀ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಸುಲಾನೆ ಕಾ ಭೀ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ರುಲಾನೆ ಕಾ ಭೀ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಸಂಗೀತ ಮೇ ಏಕ ಅಪ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪೇ ಜಬ್ ಯುದ್ಧ ಕಾ ಸಮಯ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಮೇ ವೀರ ರಸ ಕೋ ಪ್ರಧಾನ ಜೋ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಂತ್ರ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಸೆ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಭೀ ಯೋದ್ಧಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ವೀರ ರಸ ಕಾ ಸಂಚಾರ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯುದ್ಧ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉಸ್ಕಿ ಆತುರತಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ತೋ ವಹಿ ಯಹಾಂ ಪೇ ಪ್ರಕರಣ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ. ರಥಿನೋ ರಥ ಭೀ ತತ್ರ ಪತ್ ಭೀ ಸಹ ಪತ್ತಯಾ ಹಯಾ ಹಯೆ ಇಭಾ ಏಭಸ್ ಸಮಂಜಸ್ ಜಂತ ಸಂಯುಗೇ. ತು ರಥಿನ ರಥ ಭೀ ತತ್ರ. ಅಬ್ ಯುದ್ಧ ಕೈಸೆ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಉಸ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಮೇ ರಥಿ ಅಪ್ನೆ ವಿಪಕ್ಷಿ ರಥಿಯೋ ಸೇ. ಯುದ್ಧ ಕೆ ನಿಯಮ ಹೋತೆ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ರಥಿ ಹೋಗಾ ವೋ ರಥಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಲಡೇಗಾ, ಜೋ ಗಜ ಪೇ ಹೈ ಸವಾರ ವೋ ಹಾಥಿ ವಾಲಾ ಹಾಥಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ, ಘೋಡೆ ವಾಲಾ ಘೋಡೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ, ಪೈದಲ್ ವಾಲಾ ಪೈದಲ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ. ತೋ ಜಿಸ್ಕಾ ಜೋ ಸ್ತರ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಸ್ತರ ವಾಲಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಹೀ ಯುದ್ಧ ಕರೇಗಾ. ತೋ ವಹಿ ಕಹ ರಹೇ ಯಹಾಂ ಪೇ ಪೈದಲ್ ಸೇನಾ ವಿಪಕ್ಷಿ ಪೈದಲ್ ಸೇನಾ ಸೇ, ಅಶ್ವರೋಹಿ ವಿಪಕ್ಷಿ ಅಶ್ವರೋಹಿಯೋ ಸೇ, ಔರ್ ಹಾಥಿಯೋ ಪೇ ಸವಾರ ಸೈನಿಕ ವಿಪಕ್ಷಿ ಹಾಥಿ ಸವಾರ ಸೈನಿಕೋ ಸೇ ಭಿಡ ಗಯೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾನ ಯೋದ್ಧಾವೋ ಮೇ ಯುದ್ಧ ಹೋನೆ ಲಗಾ. ಉಷ್ಟ್ರೆ ಕೇಚಿತ್ ಇಭೆ ಕೇಚಿತ್ ಅಪರೆ ಯುಯುಧೋ ಖರೆ, ಕೇಚಿತ್ ಗೌರುಮುಖೆ ರಿಕ್ಷೆ ದ್ವೀಪಿ ಭೀ ಹರಿ ಭೀ ಭಟಾ. ಅಬ್ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಸವಾರೋ ಕೆ ಊಪರ್ ಯೇ ಸವಾರಿ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಆ ರಹೇ ಹೈ. ಆಪ್ಕೋ ಯುದ್ಧ ಕರೇಗಾ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಕುಛ್ ನಾ ಕುಛ್ ವಾಹನ ಚಾಹಿಯೆ ಜಿಸ್ ಪೇ ವೋ ಸವಾರ ಹೋಕೆ ಯುದ್ಧ ಕರೇಗಾ. ತೋ ಉನ್ ವಾಹನೋ ಕಾ ಯಹಾಂ ಪೇ ವಿವರಣ ದಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಉಷ್ಟ್ರೆ ಕೇಚಿತ್ ಕುಛ್ ಲೋಗ್ ಹೈ ವೋ ಊಂಟ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಸವಾರ ಹೋಕೆ ಆಯೆ, ಕುಛ್ ಹಾಥಿಯೋ ಪರ್, ಕೇಚಿತ್ ಖರೆ ಹೈ ಖರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಗಧೋ ಕೆ ಊಪರ್ ಸವಾರ ಹೋಕೆ ಆಯೆ. ತೋ ಯೇ ಸಬ್ ಜಿತನೆ ಭೀ ಯಹಾಂ ಪೇ ಜಂತುವೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ ಯೇ ಸಬ್ ದಿವ್ಯ ಹೈ. ದಿವ್ಯ ಹೈ ಅರ್ಥಾತ್ ಮತಲಬ್ ಮನುಷ್ಯಾಕಾರ ಸೇ ಬಡೆ ಆಕಾರ ಮೇ ಹೈ ಜಿಸ್ಪೇ ಸವಾರಿ ಕೀ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಕ್ಯೋಕಿ ಯಹಾಂ ಪೇ ಚೂಹೋ ಕಾ ಭೀ ವರ್ಣನ್ ಆಯೇಗಾ, ಗಿದ್ದೋ ಕಾ ಭೀ ವರ್ಣನ್ ಆಯೇಗಾ, ಬಹುತ್ ಸೇ ಐಸೆ ಜಂತುವೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಆಯೇಗಾ ಜೋ ಮನುಷ್ಯ ಸೇ ಭೀ ಛೋಟೆ ಹೋತೆ ಹೈ. ತೋ ದೇವತಾವೋ ಕಾ ಆಕಾರ ತೋ ಮನುಷ್ಯ ಸೇ ಭೀ ಬಡಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ದೇವತಾವೋ ಕಾ ಅಸುರೋ ಕಾ. तो कोई सोच सकता है कि फिर उनके ऊपर कैसे आएंगे वो, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब दिव्य जंतु हैं, दिव्य अर्थात स्वर्ग लोक के जंतु हैं, तो उनका जो आकार है वो उनकी इच्छा के अनुसार, यानी कि जो योद्धा है उसके अनुसार स्वरूप धारण कर लेता है। केचित गौरमुखे, कुछ जो हैं गौरमुखे मतलब जो वृंदावन में प्राह दिखता है लाल मुंह का मंदिर बंदर, तो लाल मुंह के बंदर के ऊपर बैठ गए कुछ। रिक्षे द्वीपे, कुछ रीछों के ऊपर, कुछ सिंहों के ऊपर, कुछ बाघों के ऊपर, इस प्रकार से सभी युद्ध किए जा रहे हैं, मतलब इन सवारों के ऊपर बैठ करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं। गृधे कंके बके अन्ने सैन भासे तिमिंगले सर्भे महिषे खड़गे खंगे गोवृषे गवयारुणे। तीनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। शिवा भी आखु भी केचित कृकाला से शशे नरे वस्तै एके कृष्ण सारे हंसे अन्ने च सूकरे अन्ने जलस्थल खगै सत्वे विकृत विग्रहे सेनयो भयो राजन विविशो विविशुस्ते अग्रतो अग्रताः। तो कैसे कैसे अन्य सवारों के ऊपर, अन्य वाहनों के ऊपर सभी योद्धा सवार हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। कोई गिद्धों के ऊपर सवार है, कोई कंक के ऊपर, कोई बक अर्थात जो बगला होता है उसको ही अपनी सवारी बनाए हुए हैं। तो ये सब बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे भगवान का जो गरुण वाहन है तो वो बहुत बड़े हैं, वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गरुण जैसे छोटे होते हैं वैसे नहीं, बहुत बड़े आकार में है वो। सेना, सेना अर्थात जो बाज पक्षी है, इस तरीके से कोई तिमिंगल, तिमंगल एक मछली होती है, जैसे भेल मछली प्राय लोग जानते हैं, भेल मछली को भी निगल लेने की जिसमें सामर्थ हो उसको तिमिंगल कहा जाता है। तो मछली तो ऐसे कोई कह सकता है कि मछली तो जलचर है, वो बाहर कैसे रहेगा, है ना, तो मछली बाहर नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे जितने भी जीव हैं ये दिव्य हैं, स्वर्ग लौकिक जीव हैं, ये किसी भी जलवायु में अपने आप को अनुकूलता प्राप्त करा सकते हैं, अर्थात वो किसी भी जलवायु में रह सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर यहाँ पे सर्वे महिषे खड़गे खंगे गोबर सेव आदि आदि जो हैं, सर्व अर्थात जो भैंस इत्यादि हैं, गेंडे हैं, गाय हैं, बैल हैं, बन गाय हैं, अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध कर रहे हैं। अन्य लोगों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरहों, मनुष्यों, क्रिकेटाओं के ऊपर अर्थात गिरगिट जो होता है, बकरों, काले हिरनों, हंसों, सूकरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशुओं सहित जल स्थल तथा आकाशचारी पशुओं की पीठ पर बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थी। अब ये तो हुआ उनकी सवारियों का वर्णन, अब जो युद्ध की सेना आ रही है उनकी कैसी शोभा हो रही है, क्योंकि जो युद्ध करने लोग आते हैं तो वो केवल ऐसा नहीं है कि आयुधों को साथ में लाते हैं, आयुधों के साथ में बड़ी बड़ी ध्वजा साथ में लेके चलते हैं, उनके साथ में छत्र भी चलता है। अब जो राजा रहेगा जैसे इंद्र हैं या बलि महाराज हैं तो उनके ऊपर छत्र चवर चलाए जाएंगे, और जो भी एक राजा का जो प्रोटोकॉल होता है या फिर जैसा उसका लवाजमा होता है उसी तरीके से व्यक्ति की आगवानी होती है। तो वहां पे ये वर्णन कर रहे हैं। चित्र ध्वज पटे राजन आतपत्रे सितामलै महाधने ब्रजदंद्रै व्यजने बाहर चामरै बात उद्धोत उत्तरणी शे अर्चि भी बर्म भूषण स्फुरद भी विशदे शस्त्र सुतराम सूर्य रश्मि भी देव दानव वीराणाम ध्वजिनो पांडुनंदना रेजतु वीरमाला भी यादसामिव सागरौ। अब कैसी वहां की शोभा हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं कि जब ये आमने सामने दोनों सेनाएं थीं, चित्र ध्वज पटे ही, चित्र ध्वज अर्थात विचित्र विचित्र रंग बिरंगी ध्वजाएं थी वहां पे, वहां पे बहुत सारे वस्त्रों को लहराया जा रहा था। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे महाराज पांडु के वंशज, हे परीक्षित महाराज, देवता और असुर दोनों ही सैनिक छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से बनी हुई मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। प्रायः जो छाता होता है वो कैसा होता है, बड़ा ही सुसज्जित होता है। हम लोग तो जो छाता लेके चलते हैं वो एक सामान्य सा रहता है, काला पीले रंग का। लेकिन जो शोभा के लिए छाता लगाया जाता है या सम्मान के लिए लगाया जाता है वो बड़ा ही विशिष्ट होता है, श्वेत रंग का होता है, उसमें मोतियों की झालर होती है, उसका जो दंड होता है वो भी मणि रत्न जड़ित होता है ना, उसमें हीरे पन्ने, लाल हीरे पीले जितने भी प्रकार के रत्न होते हैं वो उसमें जड़े रहते हैं। और वो स्वयं मूठ जो होती है वो कैसे होती है, सोने की होती है या रजत की होती है, तो वही यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मोरख पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपर तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे। सैनिक भी जो वस्त्र धारण किए हुए थे वो अभूतपूर्व थे, बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और ऊपर से उन्होंने अलंकार भी धारण किए हुए थे। चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने और तीक्ष्ण स्वच्छ आयुध आंखों को चौंधिया रहे थे। धूप पड़ रही थी, धूप पड़ने पर उनके आयुध छे जो तलवार थे, धनुष थे और भी जो भी कुछ थे परिग इत्यादि, तो वो बड़े चमचमा रहे थे। उनके जो मालाएं थी, जो स्वर्ण मालाएं या मणि रत्न जटित जो मालाएं थी वो भी अत्यधिक चमचमा रही थी। और उनके जो वस्त्र थे वो भी रेशमी वस्त्र होने के कारण, जब रेशमी वस्त्र के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है तो बड़े चमचमाते हैं, तो उसी प्रकार से उनके वस्त्र भी चमचमा रहे थे। तो उनकी भी और उनकी चमचमाहट से कोई अगर उनको देखे तो उसकी आंखें चौंधिया जाएं। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के समूहों से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। तो मानो ये सैनिक नहीं है, ये क्या है, जलचर है, है ना, मतलब एक सेना है, एक सागर है। तो सागर में क्या होते हैं, बहुत सारे जलीय जंतु होते हैं। तो मानो ये सैन्य सागर है और उसमें जितने भी सैनिक हैं वो क्या है, जलीय जंतु हैं, ऐसा यहां वर्णन किया गया है। अब जो दोनों सेनाओं के अधिपति हैं, यानी देवताओं के अधिपति इंद्र और असुरों के अधिपति बलि महाराज, उनकी कैसी शोभा हो रही है उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। वैरोचनो बलि संखे सो असुराणाम चमूपति यानम बेहायसम नामा कामगम मय नर्मितम। तो जो बलि महाराज, जो वैरोचन है, विरोचन के पुत्र हैं, प्रहलाद के पौत्र हैं, संखे अर्थात युद्ध में सो असुराणाम चमूपति, कौन है वो, असुरों के सेनानायक हैं या प्रधान राजा हैं। यानम बेहायसम नाम, उनके यान का नाम क्या है, जो उनका वायुयान है, बेहायस, बेहायस मतलब आकाश मार्ग में चलने वाला। कामगम, कामगम अर्थात इच्छा अनुसार गमन करता है। अगर बलि महाराज ने सोच लिया कि 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो इतनी चलेगा, 1,00,000 सोच लिया तो 1,00,000 से भी चलने लगेगा, यानी मन की गति से वह चलता है। कामगम, मैं निर्मितम, किसने बनाया है इसका निर्माण, मैं ने बना रहे हैं, है ना। मैं दानों की दक्षता तो आप लोग जानते ही हैं, लाक्षा भवन बोल रहा हूँ, जो सभागार का निर्माण किया था इंद्रप्रस्थ में, जिसमें स्थल में थल की भ्रांति और थल में जल की भ्रांति हो जाती थी, तो जल में थल और थल में जल, वो मय दानों ने ही बनाया था। तो बड़े अच्छे इंजीनियर हैं ये। तो मय निर्मित कामगम बेहायसम नाम यानम बैरोचनम बलि, तो बलि है इस यान से जा रहे हैं, आगे बता रहे हैं। सर्वसांगम सर्वसंग्रामिको पोतम पेतम सर्व आश्चर्यम विप्रभो अप्रतर्क मार्दंडेशम दृश्यमानम अदर्शनम अस्थित विमानाग्रम सर्वानेकाधिपैवृता बालविजन छत्राग्रै रेजे चंद्र इवोडवधे। तो और उनकी सेवा शोभा कैसी हो रही है, तो बता रहे हैं कि सर्वसांगम इकोपेतम सर्व आश्चर्यम प्रभो, सब वहां पे बड़े आश्चर्य में दिख रहे थे। अप्रत्यर्क अनिर्देशम दृश्यमानम अदर्शनम, उस दृश्य को देखकर सभी लोग अवर्णनीय थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे। यह अचिंत तथा अवर्णनीय था, वह कभी दिखता था और कभी नहीं दिखता था। उनका ज्ञान भी था वो बड़ा ही विचित्र था। अगर वो चाहें कि मुझे किसी को नहीं दिखना है तो वो अदृश्य हो जाते थे, जब चाहेंगे कि दिखना है तो दिखने लगते थे। तो वे बोल रहे हैं कि सर्व संग्रामिकोपेतम सर्व आश्चर्यम प्रभु, बड़ा आश्चर्यमय विमान था। तो विमान के बारे में था, अप्रत्यर्कम अनिर्देशम दृश्यमान अदर्शनम, कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था। तो बलि महाराज चाहते थे कि कभी नहीं दिखूं मैं, तो नहीं भी दिखते थे और उनका ज्ञान भी नहीं दिखता था। फिर आगे उसी में बता रहे हैं कैसा था वो ज्ञान। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे सर्वोत्तम चमरों से पंखा झलते हुए एवं अपने सेना नायकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो संध्या को चंद्रमा उदय हो रहा है और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। तो जिस तरीके से पौर्णमासी में संध्याकालीन चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे बलि महाराज की शोभा हो रही है। अब बलि महाराज के जो सैनिक हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि उनके सैनिक गणों में कौन कौन था। तस्यासन सर्वतो याने यूथानां पतयो शुराः नमुचे संबरो वाणो विप्रचित्ते अयो मुखाः द्विमूर्धा कालनाभोवत् प्रहेति हेतिरिल्वलाः शकुनी भूत संतापो वज्रदंष्टो विरोचनाः हय ग्रीवा शंकुशिरा कपिलो मेघदुंदुभिः तारकश्चक्रदृक्शंभो निशुंभो जंब उत्कलाः अरिष्टो अरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपाः अन्ने पोलोम कालेया निवात कवचादयाः अलब्ध भागा सोमस्या केवलम क्लेश भागिनाः सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जता मराः सिंहनादन विमुच्यन्ताः शंखा दधमो महा महारवान दृष्टा सपत्नानुत्सिकान बलभित कुपितो भृशम्। तो अब वहां का वर्णन कर रहे हैं कि जो वहां के सैनिक हैं, बलि महाराज के सैनिकों का नाम क्या है और वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो बलि महाराज को चारों ओर से असुरों के सेना नायक तथा अधिपति घेरे हुए थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे जिनमें निम्नलिखित असुर थे। असुरों के नाम बता रहे हैं, नमुची संबर बाण विप्रचित्ति अयोमुख दूरमुधा। तो ये सब नामों के अर्थ भी हैं, जैसे दूरमुधा अर्थात उसके दो सिर हैं, कोई तीन सिर वाला है, कोई ऐसे भी थे जिनके सिर भी नहीं है। कालनाभ प्रहेति हेति इलवल शकुनी भूत संताप वज्रदंष्ट विरोचन हयग्रीव शंकुशिरा कपिल मेघदुमदुभि तारक चक्रदृक शंभु निशंभु जंभ उत्कल अरिष्ट अरिष्ट नेमी त्रिपुराधिप मय पुलोम के पुत्र काले तथा निवात कवच। ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था, अब वे देवता के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान तुमुल ध्वनि की और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभित अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपासु प्रतिद्वंदियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुआ। तो चूंकि देवासुर संग्राम पहले भी हुए थे और उनमें जितने भी असुर थे वो विजय हुए थे, कई बार विजय हो चुके थे। अब जो व्यक्ति पहले कई बार जीत चुका हो तो उसके उत्साह की तो अलग ही बात होती है। तो वही यहाँ पे है, तो असुरों का उत्साह अभी भी बढ़ा हुआ है। यद्यपि इनको अमृत भक्षण का सुयोग नहीं मिला, अमृत इनको पीने के लिए नहीं मिला, लेकिन फिर भी पूर्व में इन्होंने कई विजय प्राप्त की है तो इस कारण से इनका मनोबल और भी बढ़ा, अभी भी बढ़ा हुआ है। और बलि महाराज तो है ही, बलि महाराज मतलब बलशाली है, तो इस कारण से इन लोगों का बल और भी अधिक बढ़ा हुआ है। तो इनकी तुमुल ध्वनि को देख करके इंद्र हैं उनको भी क्रोध आ गया है ना, और जितने भी देवता लोग हैं उनको भी क्रोध आया क्योंकि अब उनकी शक्ति भी बढ़ चुकी थी, उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। अब अमृत पान करने के बाद और भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण देवताओं के साथ में दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने अमृत पान किया है उसकी शक्ति है, दूसरा उन्होंने भगवत आश्रय ग्रहण किया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लेता है वो तो हमेशा ही बलशाली होता है, क्योंकि उसके पास अपने बल के साथ में मुख्य जो बल है वह क्या रहता है, भगवान का बल रहता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। अब 25वें श्लोक में श्री प्रभुपाद का तात्पर्य है, तो इसको हम पुनरावृत्ति करेंगे। ऐरावतम दिक्करिणम आरुणः सुशुभेश्वराट यथा स्रवत प्रस्रवणम उदयाद्रिम अहरपति। ऐरावतम दिक्करिणम आरुणा सुशुभेश्वराट यथा स्रवत प्रस्रवणम उदयाद्रिम अहरपति। ऐरावतम दिक्करिणम आरुणा सुशुभेश्वराट यथा स्रवत प्रस्रवणम उदयाद्रिम महरपति। माता जी शब्द अर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐरावतम, ऐरावत पर दिक्करिणम सर्वत्र जा सकने वाला विशाल हाथी, आरूढ़ सवार होकर सुशुभे देखने में अत्यंत सुंदर लगने लगा। स्वराट इंद्र यथा जिस प्रकार स्रवत बहते हुए प्रश्रवणम सुरा की लहरें उदय अद्रिम उदयगिरी पर अहिपति अहापति सूर्य। एक ऐसा हाथी जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल और सुरा को संचित रखता है, ऐसे ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे मानो उदयगिरी से जहां जल के आगार हैं सूर्य निकल रहे हों। कृपया पीछे पीछे दोहराते जाएं। एक ऐसा हाथी जो कहीं भी जा सकता है और छिड़कने के लिए जल तथा सुरा को संचित रखता है, ऐसे ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे मानो उदयगिरी से जहां जल के आगार हैं सूर्य निकल रहे हों। उदयगिरी पर्वत की चोटी पर अनेक झीलें हैं जहां से झरनों के रूप में निरंतर जल झरता रहता है। इसी प्रकार इंद्र का वाहन ऐरावत जल तथा सुरा संचित रखता है और इंद्र की ओर उसकी फुहारें छोड़ता रहता है। इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठा इंद्र उदयगिरी से ऊपर उठे तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। तो यहां पे इस श्लोक के पूर्व व्याख्या करने से पहले मैं सभी वैष्णवों की कृपा के लिए याचना करूंगा। सभी यहां पर वैष्णव वैष्णवियां दास के ऊपर कृपालेश प्रदान करें, क्योंकि वैष्णवों की कृपा से ही जीव को शुद्धा भक्ति में प्रवेश मात्र होता है। जीव की ऐसी तो अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐरावत का उल्लेख किया गया है। ऐरावत जो हाथी है, वैसे प्रायः जितने हाथी होते हैं उनके दो ही दांत होते हैं, लेकिन जो ऐरावत है उसके चार दांत हैं, है ना। तो ऐरावत सामान्य जीव नहीं है। स्वयं समुद्र मंथन के समय रत्न के रूप में ऐरावत यहां प्रकट हुए हैं। तो सारथी या फिर कहें एक वाहन के रूप में, उत्कृष्ट वाहन के रूप में तो हैं ही, साथ ही साथ उनमें और भी क्या विलक्षणताएं हैं उसका यहां पे कुछ उल्लेख किया गया है। दिग्करिडम, जैसे आप लोगों ने दिग्गज नाम सुना होगा सभी ने, है ना, प्रायः इस शब्द का प्रयोग किया कि ये तो दिग्गज हैं। तो दिग्गज होते क्या हैं? वास्तव में जो 50 करोड़ योजन का भूमंडल है, जो पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं केवल, जो समस्त भूमंडल है जिसको अनंत शेष धारण करते हैं, तो उस भूमंडल को सहारा देने के लिए चार दिग्गज होते हैं। आप लोगों ने एक वीडियो बनाया गया है इस्कॉन भक्तों के द्वारा, उसका नाम है वैदिक कॉस्मोलॉजी करके, अंग्रेजी में तो है, हिंदी में है कि नहीं मालूम नहीं। तो उस वैदिक कॉस्मोलॉजी वीडियो में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से विवरण दिया कि किस प्रकार से जो भूमंडल है उसकी संरचना होती है और कैसे कैसे सारी जितनी विशेषताएं हैं कि कैसे अनंत शेष भूमंडल को धारण किए हैं, और फिर जो दिग्गज हैं, चार दिग्गज होते हैं, वो किस प्रकार से धारण करते हैं। तो यहाँ पे जो ऐरावत हैं उनको दिक्करणम, तो दिग्गज की ही उपमा दी गई है। तो कोई साधारण हाथी नहीं है, मतलब इनमें इतना बल है कि भूमंडल के एक चौथाई भार को ये क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, ये इनका स्वभाव है। तो ऐसे दिव्य हाथी के ऊपर, ऐसे दिव्य ऐरावत के ऊपर यहाँ पे इंद्र आरूढ़ है और उनकी अपनी शोभा हो रही है। पहले बलि महाराज की शोभा का वर्णन किया गया, जो बेहायस नाम के एक मैदाना द्वारा निर्मित बड़ा सा विमान था उसके ऊपर सुशोभित हो रहे थे। अब इंद्र की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो यथा स्रवत प्रश्रवणम, तो जिस तरीके से यहां पे जो पहले उपमा दी गई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे लिखा है कि उदयाद्रिम अहरपति अहापति, अहा शब्द कहते हैं दिन को, है ना, बोलते भी अहर निश संस्कृत में होता है, अहर अर्थात दिन, निश यानी रात, है ना। तो अहर पति मतलब दिन के स्वामी कौन होते हैं, सूर्यदेव, है ना, सूर्य नारायण को दिन का स्वामी कहा गया है। तो अहर पति ही, अब जैसे सूर्य जब उदय होते हैं तो कहां से होते हैं, पूर्व से होते हैं। भारतवर्ष में तो अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें से पूर्व में कहा गया है जो उदयगिरी है ये पूर्व में आती है, प्रायः जो उत्कल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र, वहां पे उदयगिरी पर्वत स्थित है ऐसा कहा जाता है। जो नीलगिरी है वो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु तरफ। फिर आते हैं अरावली पर्वत, ये राजस्थान में आती है, काफी बड़ी पर्वतमाला है। और जो शिवालिक पर्वतमाला है वो आती है उत्तर में, जो हिमालय पर्वतमाला है उसमें कई सारी जो पर्वतमाला है उसका नाम शिवालिक है। तो भारतवर्ष पूरा चार प्रकार के ऐसी पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से। तो उदयगिरी में जब सूर्य देव प्रकट होते हैं, और उदयगिरी में क्या है, बहुत सारे झरने हैं, है ना, प्रायः जो लोग कभी बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह गए होंगे तो उनको कुछ झरनों के दर्शन अवश्य हुए होंगे, है ना, प्रायः भूमंडल पर कहीं पे भी हो जाते हैं। तो झरना कहाँ होता है, होता यह है कि पर्वत के ऊपर बहुत सारा पानी एकत्रित हो जाता है, पर्वत के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती हैं, और वो पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है, वही झरने के रूप में रहता है। तो वो झरना गिर रहा है, सूर्योदय हो रहा है, उसकी एक अपनी शोभा होती है। तो बड़ा सौंदर्य प्राकृतिक दृश्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार से कोई झरना झह रहा है और पर्वत की ओट से कोई सूर्य देव प्रकट हो रहे हैं, उनकी जैसी शोभा होती है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इंद्र की शोभा भी ऐसी ही हो रही है। जो यहाँ पे ऐरावत हाथी है वो हो गए क्या, उदयगिरी पर्वत, है ना, और जो इंद्र है वो हो गए सूर्य के समान। और उदयगिरी पर्वत में जो झरने हैं, जिससे झरने झह रहे हैं झीलों से, वो क्या है, जो ऐरावत हाथी की कनपटी से जो मद चुचा रहा है, मद अर्थात जो पसीना, ऐसा कहा जाता है। वैसे सभी जीव जंतुओं में जो पसीना होता है वो दुर्गंध युक्त होता है, कोई भी जीव हो, लेकिन हाथी एक विशेष जीव होता है कि जिसका पसीना भी कैसा होता है, सुगंधित होता है, उसकी अपनी बात है। तो गज का जो है ना, जो मद होता है या फिर कहें जो उसका पसीना होता है, बड़ा ही सुगंधित होता है। उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि गज के कनपटियों से जो पसीने की बूंदें चुचा रही हैं, वो मानो झरने की उपमा दी गई है, वो यहाँ पे वर्णन किया गया। और उसके साथ में झरना झर रहा है, पीछे इंद्र है, वो सूर्य देव के समान चमचमा रहे हैं। तो चूंकि बलि महाराज की इतनी शोभा का वर्णन किया है, तो इंद्र भी कम नहीं है, इंद्र भगवान की विभूति है, है ना, पूरी त्रिलोकी में एक ही इंद्र होता है, कोई बारह दो चार इंद्र नहीं होते हैं, है ना, जैसे ब्रह्मा जी एक होते हैं, तो इसी प्रकार से इंद्र भी एक ही होते हैं। तो उनकी एक अपनी विभूति है, भगवान की विभूति है वो, तो इसलिए उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी ने टीका में वही लिखा है कि जो झरने जिस प्रकार से संचित रहते हैं, या फिर कहें झील एक पर्वत के ऊपर संचित रहती है, ऐसे ही ऐरावत हाथी अपने पास में कुछ कलशों को भी रखता है, मतलब उसका मद तो चुचा ही रहा है, साथ में कुछ अमृत श्रावी द्रव्य या फिर सुगंधित द्रव्यों को अपने साथ में रखता है, और बीच बीच में इंद्र के लिए क्या करता है, उसकी फुहारें छोड़ते जाता है। जैसे रथ यात्रा वगैरह होती है, आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी, क्योंकि ग्रीष्म काल में ही अधिक होती है या फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है, तो लोग जल का भी छिड़काव करते हैं, जो सुगंधित जल है उसका छिड़काव किया जाता है। तो इसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि इंद्र के ऊपर क्या किया जा रहा है, ऐरावत हाथी के द्वारा जल का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो ये प्रकरण यहाँ पे चल रहा था, तो ये तो अभी आगे चलता रहेगा, युद्ध होता रहेगा। आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का तिरुभाव तिथि है, तो उनकी पुण्य स्मृति में हम कुछ उनकी लीलाओं का, उनकी शिक्षाओं का चिंतन करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जो राधा कृष्ण के मिलित तनु हैं, हैं कृष्ण लेकिन राधा भाव सुविलित हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इस धरा पर प्रकट हुए, तो उनकी सहायता करने के लिए भगवान ने कई अपने दास दासियों को भी, या फिर कहें अपनी मंजरियों को भी, क्योंकि जो कृष्ण हैं तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, लेकिन क्या है, राधा रानी के भाव से आप्लावित हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति को भूत लग जाए तो उसको फिर व्यक्ति नहीं बोलते, बोलते भूत आ रहा है, ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि उसको भूत लगा हुआ है। तो यद्यपि हैं कृष्ण लेकिन राधा रानी के भाव से आप्लावित हैं, तो इसलिए उनको राधा स्वरूपा ही कहा जाता है। तो चूंकि राधा रानी का भाव है और राधा रानी की कांति भी है, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अधिकांश परिकर देखे गए वो कौन है, राधा रानी की जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, वही अधिकांश परिकर हैं। जैसे आप देखेंगे स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद हैं, तो वो ललिता देवी हैं, है ना, राय रामानंद जी हैं, तो वो कौन है, स्वयं विशाखा जी हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के, राधा रानी की जो प्रमुख सखियां हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षद गण हुए। ठीक इसी प्रकार से राधा रानी की जो बहुत सारी सेविकाएं हैं, उनमें जो मंजरी गण प्रधान हैं, तो उन प्रिय सखियों के लिए उन्होंने निर्देश दिया राधा रानी ने वहीं पे कि तुम ही मुझे सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पे अवतरित हो, और मेरा जो कार्य है कि जो अनर्पित चरी भक्ति है, जो अभी तक जो दिव्य भक्ति है, जो माधुर्य आपन्न भक्ति है, राधा रानी का अनुगत्य लेकर के जो प्रेम भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, वो अभी तक दान नहीं की गई थी, तो उसको देने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो साथ में उनके कई सारे भक्त, उनकी कई सारी मंजरियां भी अवतरित हुई। जैसे सर्व प्रधान है राधा रानी की मंजरियों में, सेविकाओं में, वह है रूप मंजरी। माने जहां तक वर्णन किया जाता है नित्य लीलाओं में, तो रूप मंजरी जी हैं वो सबसे प्रधान मंजरियों में से एक आती हैं। जब जीव आध्यात्मिक लोक में पहुंचता है और वो माधुर्य भाव में रहता है, राधा रानी की सेवा करना चाहता है, तो रूप मंजरी के अनुगत में जो हमारे गुरु मंजरी इत्यादि रहते हैं, गुरुदेव वगैरह रहते हैं, उनके अनुगत में ही उनको सेवा प्रणाली प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हमारे गौणी वैष्णव संप्रदाय में हम लोग सीधा अपने आप को रूपानुग भी कह देते हैं। जो रूप गोस्वामी पाद हैं, जो रूप मंजरी हैं, तो उन्हीं के अनुगत में हमें सारी सेवाएं या सारा सेवा सुख प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये हुए रूप मंजरी। जितने भी छह गोस्वामी हुए, ये सीधे राधा रानी की छह प्रमुख मंजरियां हैं जो वहां पे सबसे विशिष्ट सेवाओं को करती हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे अलग अलग सेवाओं के लिए यहाँ पे भेजा गया। जैसे रूप गोस्वामी पाद हैं, जो रूप मंजरी हैं, उनकी जो मुख्य सेवा रही, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप जो रस शास्त्र हैं, अर्थात राधा कृष्ण के जो निगूढ़तम मिलन की लीलाएं हैं या राधा कृष्ण का जो सिद्धांत है, उसको आप विशेष रूप से उल्लेख करना। तो रूप गोस्वामी पाद ने जो शास्त्रों की रचना की है, जैसे आप भक्त रसामृत सिंधु पढ़ेंगे या उज्ज्वल नीलमणि जो भक्त रसामृत सिंधु का परिशिष्ट भाग है उसको पढ़ें, या फिर रूप गोस्वामी के द्वारा एक दो नाटक लिखे गए हैं, बड़े विशेष नाटक हैं, विदग्ध माधव और ललित माधव। विदग्ध माधव में वृंदावन लीला का वर्णन आता है, और जो ललित माधव है उसमें मथुरा एवं द्वारका लीला का वर्णन आता है। कई सारे उन्होंने दिव्य ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया रूप गोस्वामी पाद ने। तो ये तो मतलब कुछ एक दो ही ग्रंथों के हमने नाम लिए। तो इससे पता चलता है जो आचार्य का जो मुख्य सेवा है, रूप गोस्वामी पाद की जो मुख्य सेवा थी वो क्या थी, वो रस आचार्य हैं, जो भगवान राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका निगुण तत्व क्या है उसको उन्होंने स्पष्ट करने के लिए कई सारे ग्रंथ लिखे। उनके जो अग्रज थे बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी पाद, वो नित्य लीला में लवंग मंजरी है, और लवंग मंजरी जो सनातन गोस्वामी पाद है यहाँ, उनकी मुख्य सेवा थी, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सेवा दी थी। यद्यपि वैराग्य प्रधान तो सभी थे, लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी पाद ने विशेष वैराग्य की शिक्षा भी दी, और साथ ही साथ जो साधन भक्ति है, साधन भक्ति को कैसे अनुशीलन करना चाहिए उन्होंने मुख्य रूप से सिखाया। खुद अपने जीवन में भी करते थे, नित्य प्रति गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाते थे, फिर नित्य प्रति मथुरा भी जाते थे मधुकरी करने के लिए। सिद्धांत में भी उन्होंने दिखाया कि एक बार मदन मोहन जी स्वयं उनसे बोल रहे थे कि हे सनातन, तुम मुझे केवल बिना नमक की बाटी भोग लगा देते हो, कुछ इसमें नमक तो थोड़ा डाल दिया करो। तो वहां पे उन्होंने सिद्धांत में भी दिखाया। यद्यपि देखो, क्योंकि उन्होंने गुरु आज्ञा उनको क्या हुई थी, गुरु उनके कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं, कि उन्होंने कहा था कि तुम सिद्धांत ग्रंथों को प्रकाशित करना और जो वृंदावन की लुप्त लीला स्थलियां हैं उनका प्रकाशन करना। तो गुरु आज्ञा मुख्य है। यद्यपि यहाँ पे स्वयं श्री ठाकुर श्री मदन मोहन लाल उनको आज्ञा कर रहे हैं कि थोड़ा नमक दे दो, तो उसको नहीं मान रहे हैं, जो गुरु ने बोला है उसी को इन्होंने सिरोधार किया हुआ है, तो सिखा रहे हैं। तो इन्होंने जो साधन भक्ति है, जैसे अगर आप बृहद भागवतामृत का अध्ययन करें तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे व्यक्ति एक एक करके सोपानों में आगे बढ़ता जाता है, कि कैसे भक्ति का स्तर बढ़ता है, और सर्वोत्कृष्ट जो माधुर्य भक्ति है वो कैसे सर्वोत्कृष्ट है, या फिर जो गोलोक की भक्ति है यानी वैकुंठ भक्ति, वैकुंठ के ऊपर फिर साकेत की भक्ति, साकेत के ऊपर मथुरा की भक्ति या द्वारका की भक्ति, फिर मथुरा की भक्ति, ये सारे भाव हैं। तो उसके बाद फिर गोलोक, गोलोक में किस प्रकार से व्यक्ति वात्सल्य, साख्य या फिर माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करता है, उसका उन्होंने वर्णन किया। फिर इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, ये हैं भगवान की यानी जो नित्य मंजरियों में, इनको तुलसी मंजरी भी कहा गया है, कोई कोई इनको रति मंजरी भी कहते हैं, तो जैसा भी इनको समझें, तुलसी मंजरी अगर समझें, तो इनकी जो मुख्य सेवा रही वो रही मानसी सेवा को प्रकाशित करना। मानसी सेवा मतलब जैसे हमारे आचार्यों ने जो भक्ति सिखाई है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे तीन प्रमुख भक्तियां हैं, बाकी जब हैं, बाकी जो भक्ति के प्रकार हैं वो सब इनका ही विस्तार है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से ये तीन ही भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, श्रवण करते हैं, कथा बोलते हैं, श्रवण करते हैं। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तो रूप रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने ये विवेचन किया कि श्रवण कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो श्रवण है वो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, अगर श्रवण अश्रद्धा पूर्वक होगा तो वो फल नहीं देने वाला होता है। उन्होंने बताया कीर्तन कैसे होना चाहिए, प्राय लोग कीर्तन में भाग लेते हैं, कीर्तन उन्होंने कहा आवेश पूर्वक होना चाहिए, यानी व्यक्ति जब कीर्तन कर रहा है तो इस प्रकार से कीर्तन होना चाहिए कि संसार की उसको कोई स्मृति नहीं होनी चाहिए, केवल जो हरे कृष्ण महामंत्र या जो भी भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है उसमें ही उसको आविष्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। और फिर उन्होंने स्मरण बताया, स्मरण कैसे करना चाहिए, तो बोले आत्मस्वरूप बोध पूर्वक, यानी हम भगवान के क्या है, जैसे बाहर चैतन्य चरितामृत में बताया गया जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास, तो ये भाव रखते हुए और उसमें भी जो विशिष्टता है अगर उसको और हम किसी तरीके से प्राप्त कर सकें भजन साधन के द्वारा या गुरु की कृपा के माध्यम से तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से अगर श्रवण, कीर्तन, स्मरण इस प्रकार किया जाएगा तो बहुत शीघ्र अति शीघ्र हमें फलदायी होने वाला है। तो ये उन्होंने अपने शास्त्रों में निचोड़ बताया, यानी अपना अनुभव बताया। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने एक अंतिम दशा में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है विलाप पुष्पांजलि, बड़ा दिव्य ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कई सारे सेवाओं की स्मृति की है, मतलब मानसी सेवा में बैठे हुए हैं और मन ही मन राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक सेवा का उल्लेख किया, कह रहे हैं कि एक बार योगपीठ विराजमान है, राधा कृष्ण है, साथ में अष्ट सखियां से परिवेष्टित हैं। एक दिन राधा रानी जब योगपीठ में विराजमान थी सभी सखियों के साथ, कृष्ण के साथ में, तो करधनी पहनना भूल गई, किसी कारण से भूल गई, भाव में थी। बाद में जब योगपीठ पे विराजमान थी तो उनकी दृष्टि गई कि अरे मैंने करधनी तो धारण ही नहीं की है, श्रृंगार में वो भी एक आता है 16 श्रृंगार में। उन्होंने तुलसी मंजरी या फिर कहें जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं उनको उन्होंने नेत्र कोण से ही इशारा कर दिया, इंगित किया कि मेरी करधनी नहीं है, जाके लेके आओ, और वो समझ भी गए। जो रति मंजरी है, तुलसी मंजरी है, वो समझ गई, वो जाती हैं और लाने लगती हैं। इतने बीच में उनको ललिता जी मिल जाती हैं। अब बड़ी सखी मिल गई तो क्या बोले, अब ललिता पूछने लगी उनसे कि अरे तुम क्या लेके जा रही हो, जल तो इनको बताना पड़ा। यद्यपि जो राधा रानी का आदेश ऐसा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एकदम से अपने आप गुप्त रूप से लेके आ जाओ, लेकिन ललिता जी ने देख लिया, वो पूछने लगी तो बताना पड़ा। तो ललिता जी ने उनके हाथ से ले ली और ललिता जी ने अपने हाथ से श्रीमती राधा रानी को वो करधनी पहनाई। तो इस पर राधा रानी को बड़ा क्रोध आ गया कि अरे मैंने बोला था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो इसने ये सेवा अपराध कैसे किया। और राधा रानी ने पांच प्रहार कर दिया, किसके ऊपर, तुलसी मंजरी के ऊपर। तो उनके बाहु के ऊपर राधा रानी का चरण चिन्ह सुशोभित हो गया, मतलब नित्य लीला में भी कहा जाता है कि उनकी बाहु के ऊपर राधा रानी का चरण सुशोभित रहता है। तो ये सब स्मरण में चल रहा है, मतलब सामने नहीं चल रहा है लेकिन स्मरण में देख रहे हैं वो नित्य लीला को। तो उसमें उन्होंने विलाप पुष्पांजलि में कहा कि ऐसा मैं फिर से कब ऐसी कृपा की भाजन होंगी, मतलब उन्होंने मंजरी भाव में ऐसा लिखा है कि मैं ऐसा कृपा का भाजन कब होऊंगा कि राधा रानी मेरे कंधे के ऊपर या पीठ के ऊपर अपना पाद प्रहार कर रही है, तो कृपा ही है एक प्रकार से। तो उन्होंने ऐसा वर्णन किया। तो बताया जा रहा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं वो कौन है, ये हैं मानसी सेवा के आचार्य। फिर इसके बाद आते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद। जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद हैं, यद्यपि उनके कोई शिव विग्रह नहीं थे, बाकी सभी लोगों के श्री विग्रह थे, इनके जो विग्रह थे वो श्रीमद् भागवतम ही उनके श्री विग्रह थे। और चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया था कि तुम श्रीमद् भागवतम को सुंदर ढंग से गायन करके वादन करके लोगों को रसपूर्ण तरीके से सुनाया करो। कहते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी संगीत के बड़े अच्छे जानकार थे और भागवतम के श्लोकों को कई तरीके से गा करके सुनाते हैं। अब जिसको संगीत का ज्ञान है वो जितने राग होते हैं उतने प्रकार से श्लोकों को गा सकता है, और एक राग में भी 7 स्वर होते हैं, जिस स्वर से प्रारंभ कर दिया जाए तो अलग अलग धुन उसमें भी आ जाएंगे। तो कई प्रकार से श्रीमद् भागवतम को अलग अलग ढंग से गाते हुए विस्तार करते थे। जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद है वो रस मंजरी है, जीव गोस्वामी पाद विलास मंजरी है। जो विलास मंजरी है या फिर जो जीव गोस्वामी पाद है, इनकी मुख्य सेवा थी कि जो वैष्णव दर्शन है उसको स्थापित करना, यानी वैष्णव सिद्धांत। जैसे कि प्राय ऐसा पहले कहा जाता था कि गौड़ियों के पास अपना वेदांत सूत्र नहीं था कोई, यानी सभी जितने आचार्य हुए जैसे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर शंकराचार्य भगवत पाद, तो जितने भी आचार्य हुए उन्होंने अपने अपने संप्रदायों के लिए वेदांत के ऊपर भाष्य लिखा था, लेकिन गौड़ीय वेदांत भाष्य नहीं था। तो एक बार लोगों ने कहा अरे ये गौड़ीय संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है, इनका अपना भाष्य नहीं है। तो श्रील चक्रवर्ती पाद के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के जो शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण पाद, वो जयपुर गए हुए थे और एक हफ्ते में मात्र श्री गोविंद देव की कृपा से फिर वो भाष्य लिखा गया था। तो यद्यपि इसके जो सिद्धांत थे, जो गौड़ी वेदांत के सिद्धांत थे, वो पहले ही सत्संदर्भ इत्यादि ग्रंथों में पहले ही निरूपित कर दिए गए थे। तो वो जीव गोस्वामी मुख्य सेवा रही। और आज जिनका तिरुभाव तिथि है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी साहब पाद, इनकी जो मुख्य सेवा श्रील आचार्य या फिर कहें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान की थी, वो बताई थी विग्रह सेवा की, कि तुम विग्रह सेवा के सिद्धांतों को स्थापित करो। उन्होंने कई सारे, जैसे हरि भक्ति विलास है, ये पहले जो ग्रंथ लिखा गया था ये लिखा गया था श्रील सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा, लेकिन इसका जो एडिटिंग वर्क है, संपादन का कार्य है, वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के द्वारा किया गया। जैसे आप लोग सठ संदर्भ के बारे में विशेष सुनते होंगे, सठ संदर्भ एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि जिसमें श्रीमद् भागवतम के अनेक तत्वों के आधार पर श्रीमद् भागवतम को देखा गया है कि भगवत संदर्भ क्या है, प्रीति संदर्भ क्या है, तत्व संदर्भ क्या है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग एंगल से श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया गया, वो है षट संदर्भ। तो षट संदर्भ का जो पूर्व अवलोकन है या फिर कहें जो पूर्व संकलन है, सबसे पहले वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने ही किया है, लेकिन बाद में ये क्रांत विक्रांत खंडित था, यानी जम्बल्ड था, यहां वहां था, एक ऑर्डर में नहीं था। तो इन्होंने ही जीव गोस्वामी पाद को कहा कि ये जो मेरा ग्रंथ है षट संदर्भ, इसको आप विधिवत रूप से क्या कर दें, इसके संपादन कार्य कर दें। पुस्तक लिखना एक अलग कार्य है, लेकिन पुस्तक का संपादन करना एक दूसरी सेवा होती है, यह अपने आप में एक बहुत महत्वशीलनी सेवा होती है। तो वही यहां पे बताया जा रहा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हैं, प्राय जितने भी हमारे आचार्य हुए वो दक्षिण भारत से ही थे, बंगाल से ही थे, ये केवल जो है ये दक्षिण भारत से थे, है ना। जैसे जीव गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं, ये सभी लोग तो बंगदेश से ही थे, अर्थात बंगाल से ही थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, ये कहाँ से थे, ये दक्षिण से। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं तो उनको भी बंग से ही माना जाइए, क्योंकि जो तपन मिश्र पहले विराजमान थे वो कहाँ पे थे, बंगाल में, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल में थे, है ना। जब चैतन महाप्रभु उनके पास में गए थे उन्होंने आदेश दिया कि तुम काशी में जाके रहो, तो फिर जाके अपने पुत्र के साथ में जो तपन मिश्र हैं, अपने पुत्र के साथ में यानी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद के साथ में कहां पर आ गए थे, बनारस में आके रहने। तो तत्व तो अगर देखा जाए तो बंग से ही थे, यानी बंगाल से ही थे। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद थे वो अपने दो काका जी के साथ में, इनके जो पिताजी हैं वो थे वेंकट भट्ट, और इनके जो चाचा जी थे, काका जी थे, वो थे त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने वृंदावन महिमामृत और नवदीप महिमामृत जैसे दिव्य ग्रंथों का प्रकाशन किया है, या फिर राधा रस सुधा निधि जैसे दिव्य ग्रंथों का जिन्होंने प्रकाशन किया है, वो इनके चाचा ही थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जब श्रीरंगम में रहा करते थे तो इनके जो पिताजी थे वेंकट भट्ट, वो श्रीरंगम मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो इन्हीं के घर पर रहकर उन्होंने चतुर्मास किया था। जब चतुर्मास का अवसर प्राप्त हुआ, मतलब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा का अवसर इनको प्राप्त हुआ इनके परिवार को, तो ये लोग तो बड़े धन्य धन्य हो गए, और चैतन्य महाप्रभु की अभूतपूर्व इन्होंने सेवा की। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद थे उस समय तो बहुत छोटे से बालक ही थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में हमेशा ही अग्रगण्य रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के लिए मुखवास, और मुखवास के साथ साथ जो भी उनकी सेवा होती, कावेरी नदी पर स्नान के लिए ले जाना, चैतन्य महाप्रभु जो श्रीरंगम मंदिर के लिए दर्शन कर लिए जाते थे नित्य प्रति दर्शन के लिए जाना, तो चार महीने तक निरंतर ही इनको सेवा प्राप्त होती रही गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को। तो बड़े कृपापूर्ण रहे। चैतन्य महाप्रभु जब वहां से जाने लगे तो इनको बड़ा विक्षोभ होने लगा। ये मन ही मन चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देख के प्रसन्न नहीं होते थे। इनको लगता था कि अगर मैं नवदीप में होता तो कितना अच्छा होता कि चैतन्य महाप्रभु के जो दीर्घ कुंतल केश थे उनके साथ में उनके जो कृपापूर्ण संकीर्तन है उसका अगर मैं दर्शन करता तो कैसा होता। चैतन्य महाप्रभु ने ये भाव देखते हुए इनको एक बार स्वप्न में अपना ऐसा ही दर्शन प्रदान किया। अपना तो दर्शन दिया ही उन्होंने स्वप्न में, साथ में नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य का भी इनको दर्शन कराया और उनकी कृपा भी इनको प्राप्त कराई। जब चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने लगे तो ये तो एकदम भाव विवल हो गए, और भाव विवल होते ही इनके मन में भाव आया कि अरे मैं तो ये विरह सही नहीं पाऊंगा। तभी चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया कि देखो तुम मेरे साथ आना चाह रहे हो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे जो माता पिता हैं ये परम वैष्णव हैं, इनकी तुम सेवा करो, जब तुम्हारे माता पिता अंतर्धान हो जाएंगे तब तुम वृंदावन आना। तो माता पिता के अंतर्धान होने के बाद ये वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो श्री रुद्र गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के अनुगत में यहाँ पे ये सेवा करने लगे। एक समय जब राधा रमण प्रकट हुए तो ये कथा तो आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से राधा रमण प्रकट हुए, और राधा रमण के मतलब भाव ये है कि जब व्यक्ति अत्यधिक विरह आतुर हो जाता है तो फिर भगवान अपने आप ही कोई ना कोई मार्ग अन्वेषण कर ही लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि वह अपने भक्तों के पास में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद हैं ये किस चीज किस वस्तु के आचार्य हैं, अर्चा विग्रह सेवा के। तो इन्होंने अर्चा पद्धति, षट क्रिया सार दीपिका और कृष्ण कर्णामृत टिप्पणी इत्यादि अनेक ग्रंथ लिखे, और हरि भक्ति विलास का संपादन और षट संपर्व का जो मूर्त संकलन करता है वो तो ये हैं ही। तो आज के इस पावन दिवस पर हम उनका स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो है हम सभी के ऊपर कृपा की दृष्टि रखें, और जिस प्रकार से उनके भाव उल्लास और प्रेम उल्लास के कारण राधा रमण उनके हृदय कमल से ही मानो प्रकट हुए हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में भी श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह प्रकट हो, यह उनसे इस आज के दिवस में प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, समय तो अत्यधिक हो चुका है। प्रश्न अगर किसी का है तो बाद में पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।